अब मूसा के पहले मिशन की तकमील का वक्त करीब है। शुरू में बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे जाने के दो मकासद थे, बाकी अम्बिया का बस एक ही था, नबी सल्लम का भी एक ही है, लेकिन मूसा के दो थे। पहला क्या था कि इस बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाओ। अब उसका ड्रॉप सीन सुनते हैं, 77 से 89, दुश्मनों से निजात। वलकद ओहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा ना डर। फिरौन ने अपने लश्करों समेत इनका ताकुब किया, फिर तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कि कुछ छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता ना दिखाया। क्या पता चला कि हर लीडर राह दिखाता नहीं है, कुछ राह भुला भी देते हैं। सोच समझ के चलिए किसके पीछे चल रहे हैं। ऐ बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर की दाई तरफ का वादा किया और तुम पर मनो सलवा उतारा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोजी खाओ और इसमें हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए तो वो तो यकीनन तबाह हो गया। हाँ बेशक मैंने बख्श देने वाला हूँ, जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करें और राहे रास पर भी रहें। ऐ मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज़ जल्दी ले आई? अल्लाह से मिलने की चाहत। क्या हम भी नमाज़ों में भाग भाग के जल्दी जल्दी जाते हैं? क्या हम भी क्लास में वक्त से पहले जाते हैं, या हम कहते हैं चलो शुरू का तो थोड़ा हिस्सा निकल ही जाए, फिर इतनी देर बैठना पड़ेगा। चलो शुरू की तरावियाँ लंबी होती हैं, ज़रा वो निकल जाएंगे तो फिर आएंगे। तो हम सब देखें कि शुरू में सुनने वाले क्या हम उनमें होते हैं या हम बीच में शामिल होते हैं। और इसमें एक इशारा लिख लीजिए उन लोगों को कि जो वाकई लेट कमर्स हैं। देखिए को मजबूरी है तो और बात है, लेकिन बिला वजह देर से नहीं आता, क्योंकि टेम्पो नहीं बनता, रोक नहीं आता, और आप वो काम पूरा वक्त सोचते रह जाते, मेरा शुरू का मिस हो गया, पता नहीं क्या था, ये था वो, और जल्दी भी ना उठिए। क्या पता कि आखिर में ही वो बात हो कि जिसने आपके सारे मसले जो आपके दिमाग पे उलझे हुए थे, जिसकी वजह से आप परेशान थी, उसका हल देना हो। तो चीज़ पूरी अद व मुहविन कल्ला, हदीस में आता है अल्लाह के पसंदीदा काम कौन से हैं, हमेशगी के साथ जो किए जाएँ चाहे थोड़े हों। तो खैर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था, मूसा कौम से पहले ही चले गए, सब्र नहीं हुआ, आ रहे हैं पीछे वो भी, मैं उनको कह आया हूँ लेकिन मैं पहले आ गया, और मैंने अरब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया। बस मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे, ऐ मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा अपना इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो कि तुमने मेरे वादे के खिलाफ किया। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे के खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ लाद दिए गए थे इन्हें हमने डाल दिया और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिए। फिर इसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल कर खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की सी आवाज़ भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन भूल गया, क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो इनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और न इनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है? यानी मूसा तो चले गए और पीछे फितना बन गया सामरी का, आजमाइश आ गई। आपके मेरे अमल की बात क्या है कि कहीं भी जाने से पहले अच्छी सी रहनुमाई दें। पीछे वालों को अगर इंस्ट्रक्शंस पूरी ना मिलें तो वो गलतियां करते हैं, पूरी भी मिल जाए तो भी बड़ी करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह की बना, कोई एक बार थोड़ी करते हैं। वो देखे, वो कहते हैं ना कि गलती हो ही जाती है ना, तो मैं अक्सर कहती हूँ एक ही गलती तो नहीं करनी चाहिए, नई नई किया करें, बार बार करें। जो नई नई गलतियाँ करते हैं ना, ही इज़ अ गुड लर्नर, और जो एक ही गलती बार बार कर रहा है ना, इसका अंदर कि वो स्टबन है। अपनी कोई आदत सोचिए, कोई अपनी कमी बेशी, और स्पेशली जिस पे बार बार शर्मिंदा होना पड़े और जिसकी वजह से बार बार आपको और आपकी कॉज को नुकसान हो, यहाँ बैठे बैठे बोलिए कि मैं अल्लाह से दुआ करके आज इसको छोड़ूंगी। नियत करें, और मैं भी अपने लिए करूँ और आप भी करें कि अल्लाह हमारी कमियाँ बेशियाँ दूर कर दे, हमने भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। यकीन करें 99 खूबियों में कभी कभी उस बंदे में बस एक कमी होती है, खामी होती है, शॉर्ट कमिंग होती है, सुस्ती होती है, लिथार्जिक होता है, डिली डेली का शिकार है, पेंडिंग है, थोड़ी देर के बाद में कोई केयरलेस होता है, कोई एक्स्ट्रा क्लेवर होता है, अपनी मांगी अल्लाह से, या मांगे मैं भी मांग रही हूँ आप भी मांगे, और अगर अल्लाह ने आज ये दुआ सुन ली ना तो अब आपका मुस्तकबिल रोशन है, अल्लाह आपसे बहुत कुछ लेगा। फिर इसके बाद वादा खिलाफी नहीं करनी, सरकशी नहीं करनी, रब को राज़ी करने में जल्दी करना है। हम क्या कहते हैं, नाराज़ कर लो ना फिर उमरे पे चले जाएंगे। अच्छा, नाराज़ करने की जरूरत नहीं है हमारे लफ्ज़, हम कहते हैं खुश हो लो, खा लो जो खाना है, कर लो जो पहनना है, जो चलो आप रोज़े आ रहे हैं नमाज़ भी छोड़ दो कोई बात नहीं फिर कर लेंगे काम। नहीं, राज़ी करने वाले कामों में जल्दी और नाराज़ करने वाले कामों में देर। लोगों को गुमराह नहीं करना, वादा खिलाफी नहीं करनी। अब यहाँ अगला स्टेप, बिल्कुल तरतीब चल रही है जहनों में। मूसा गए पीछे से बछड़ा बन गया, अल्लाह ने वही के लिए बता भी दिया, गुस्सा तो बहुत आया लेकिन जब जाकर देखा तो फिर तो गुस्से पे काबू ही ना रहा। इसको अरब फारसी में कहते हैं दीद के मानित शुनीद, सुनी हुई बात देखी हुई बात का तकाबुल नहीं कर सकती। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई का मुआखजा कर रहे हैं, आयत 90 से 104, इत्तबाए रसूल वलकद काल लहुम हारून, और हारून अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही इनसे कह दिया था कि मेरी कौम वालों, इस बछड़े से सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान है, बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी तक तो हम सब उसी के मुजावर बने रहेंगे, यानी हमने नहीं सुधरना, उनके आने तक तो हम यही कुछ करेंगे, वैसे वो जब आ जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, कभी भी नहीं होंगे आप ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हारून इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज़ ने रोका था कि तुम मेरे पीछे ना आया, क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी माँ जाए भाई, प्यार मोहब्बत दिलाने वाला अंदाज, वो मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। पता चला कि हजरत हारून दाढ़ी वाले थे, क्लीन शेव नहीं थे। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ है कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतज़ार भी ना किया। क्या पता चला कि अगर आप किसी के कोऑर्डिनेटर हैं या उन्हीं के कायम मुकाम हैं, किसी की जगह किसी के सब्स्टिट्यूट हैं, किसी का भिखार हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। लोग पहले झिझबिच का शिकार होते हैं और अगर आपने कोई नई चीज़ छेड़ दी तो वो बिल्कुल भिदक जाएंगे। आप देखिए नबी सल्लम के दुनिया से जाते ही फितने शुरू हो गए, इतनी फौजें जैसे यदखलून नास फी दीन इलाही अफवाजा हुआ था ना, इसी तरह यखरजून फी दीन इलाही अफवाजा हुआ। मुसलमान का जाब अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले गया, जब लीडर्स नहीं होते तो बहुत दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर करके भी, तो उसमें फिर ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा काम करने की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम से जब पूछा अभी क्या किया आपने, इससे पता चला रिपोर्ट भी मांगनी चाहिए। अच्छा जी बताइए मेरे बाद क्या हुआ, अच्छा मेरे पीछे क्या किया, आप फिर आप या तो हंस के दिखा दें या रो के दिखा दें, प्रोग्रेस होती तो आप वैसे ही साथ साथ दिखा रहे होते और होती है तो आप दिखा देते हैं, है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्वेश्चनिंग, आप अपने बच्चों को कोई काम दें ज़रूर पूछें, वरना तो वो करेंगे ही नहीं, और यही तो हो रहा है हमारे मुल्कों में, एहतसाब कमेटियाँ बनेंगी फिर ही जाके लोग सीधे होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में हारून ने कहा कि मैंने ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं की कि ये तो भाग जाएंगे, तफरका डाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सामरी तेरा क्या मामला है? इसने जवाब दिया, मुझे वो चीज़ दिखाई गई जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने कासिद इलाही, जिब्राइल की तरफ इशारा, उसके नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, इसे इसमें डाल दिया, इस तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए बना दी। कहा, अच्छा जा, दुनिया की ज़िंदगी में तेरी यही सज़ा है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, ला मी सांस, डोंट टच मी, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज़ ना टलेगा, और अब तो अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका इत्तेकाफ़ किए हुए था कि हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उठाएंगे। असल बात यह कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, इसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं, इसका इल्म तमाम लोगों पर हावी है। इस तरह हम तेरे सामने पहले की गुजरी हुई वारदातें बयान फरमा रहे हैं और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता कर चुके, इससे जो मुंह मोड़ेगा वो यकीनन कयामत के दिन अपने बोझ लादे हुए होगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और इनके लिए कयामत के दिन बहुत बड़ा बोझ है। जिस दिन सूर फूका जाएगा, जरा सा कयामत का मंजर देखिए, और गुनाहगारों को हम उस दिन दहशत की वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएं, वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे, हम तो दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे, जो कुछ वो कह रहे हैं इसकी हकीकत से हम बाखबर हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी राय वाला कह रहा होगा कि तुम सिर्फ दुनिया में एक ही दिन रहे हो। ये दुनिया जिसने आज हमारी जान ली हुई है ना, हिलकान हो रहे हैं, सांस फूला हुआ है, वहां जाकर सिर्फ एक दिन बल्कि उसका भी कम वक्त लगेगा, तो क्या करें, इसके ही पीछे रहें? कभी भी दुनिया के गम में अपनी सेहत खराब ना करें, कभी भी दुनिया के गम में अपना मूड खराब ना करें, कभी दुनिया के गम में अपने आप को नफ्सियाती मरीज ना बनाएं। मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो ना सही। आगे सूरह हदीद में ये बहुत प्यारी आयत आएगी, वहाँ भी इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। यहाँ एक तकाबुल करते हैं, हमने आयत 95 से 100 में हज़रत मूसा के साथियों की कुछ बातें देखी थी, उनमें और सहाबा में मुमासलत। हर नबी को अल्लाह कुछ अच्छे लोग ज़रूर देता है। मूसा के जो अच्छे लोग थे उनमें बहादुरी थी, सहाबा भी बहादुर थे, वो भी मुवाहिद थे, ये भी मुवाहिद थे, दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने वाले थे वो भी थे, और हर मुश्किल में अल्लाह ताला से रजू करते थे। आप और मैं भी इसी को अपने लिए क्राइटेरियन बना लीजिए अगर हमें भी अंबिया के मिशन को आगे लेकर चलना है। फिर आगे अल्लाह की रज़ा को पाने वाले अमाल, रसूल की पैरवी करनी है, शिर्क से बचना है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी, नेकी का हुक्म देना है, यकीन रखना है कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ पर हावी है, और अल्लाह के जिक्र से मुंह नहीं मोड़ना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब समझे कि सूरत के आखिरी दौर को हैं जिसमें कायनात और कुछ बहुत ही ज़्यादा यानी सोच में डालने वाली आयात हैं। 105 से 115, रुकू 15, शिफात बेइज़्निल्लाह होगी, क़्यामत के कुछ मनाजिर। व यसअलूनक अनिल जिबाल, वो आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि इन्हें मेरा रब रेजा रेजा करके उड़ा देगा, और ज़मीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान करके छोड़ेगा, जिसमें तू ना किसी मोड़ तोड़ को देखेगा ना ऊंच नीच को। जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कजी ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाज़ें पस्त हो जाएंगी सिवाय खुसर फुसर के, तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। इमेजिन करें, पिन ड्रॉप साइलेंस। उस दिन सिफारिश कुछ काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और इसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ इनके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे उस जिंदा और कायम और दाएं मुद्दबिर अल्लाह के सामने कमाल आजजी से झुके हुए होंगे। यकीनन वो बर्बाद हुआ जिसने जुल्म लाद लिया, और जो नेक अमाल करेगा और ईमानदार भी हो तो ना इसे बेइंसाफी का खटका होगा ना हक तलफी का। यह आयत इस बात की दलील है कि अगर आपने किसी पे ज्यादती नहीं की तो घबराइए भी नहीं। वो समझ रहा है ज्यादती की, कोई बात नहीं, आप ना करिए, इंशाल्लाह क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा। इसी तरह हमने तुझ पर अरबी में कुरान नाजिल फरमाया और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया ताकि लोग परहेजगार बन जाएं या इनके दिल में सोच समझ तू पैदा करे। बस अल्लाह अली शान और सच्चा और हकीकी बादशाह है। तू कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ ये दुआ कर के परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दिया था लेकिन वो भूल गए और हमने इसमें कोई अज़्म ना पाया। क्या पता चला, इल्म की बरकतें। आप देखिए कि हज़रत मूसा के नाते से हमें दो दुआएं जो मिल गईं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांगा करते थे, बल्कि दोनों ही दुआएं मांगते थे। तो आपने मैंने भी इल्म की तलब रखनी है, और रब्बी ज़िदनी मालन, रब्बी ज़िदनी बैतन, रब्बी ज़िदनी कपड़तन, रब्बी ज़िदनी जूतातन, नहीं वो भी मिल जाएगा। इल्म मांगिए, सच्चा इल्म आता है ना, सच्ची खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो रब की रज़ा को पाने के क्या है नुक्ते? अपने चेहरे को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना है, मोमिन बनकर रहते हैं, पुरअज़म रहना है, कुरान पढ़ने में जल्दी नहीं करनी, हसूल इल्म की दुआएं याद करनी है, और अहद को नहीं भूलना। अल्लाह हमें भी पक्का अहद का कर दे। चूँकि अब आदम का तस्करा आया अहद के नाते, तो अगला रुकू, रुकू 116 से 128, शैतान इंसान का दुश्मन है। वह इस कुल नालिल मलाइकत इसजुदू ली आदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने किया, इसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा है आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, कि तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तू भूखा होता है ना नंगा, और ना तू यहाँ प्यासा होता है ना धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने इसे वसवसा डाला, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी ज़िंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी ना हो, यानी जिस फल को चखकर तू हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, यानी मौत नहीं आएगी और तू बादशाह बन जाएगा। झूठी बात है, सब सबक दिखा रहा है। चुनाच इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस इनके सतर खुल गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांकने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बह गए। फिर इसके रब ने नवाजा, इनकी तौबा कबूल की और इसकी रहनुमाई की, फरमाया तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, ना तो वो बहकेगा ना तकलीफ में आएगा। लेकिन इसके बाद वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, यह आयत का नंबर नोट कीजिए और बाद में इसकी तफसीर सुनिएगा। और हाँ, जो मेरी याद से रूगरदानी करेगा, इसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी, और हम इसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि इलाही, तूने मुझे बंदा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था कि तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया, तो आज तू भी भुला दिया जाता है। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए। और बेशक आखरत का अजाब नहायत ही सख्त और बाकी रहने वाला है। क्या इनकी राहबरी इस बात ने भी नहीं की कि हमने इनसे पहले बहुत सी बस्तियों को हलाक कर दिया, जिनके रहने सहने की जगह पे ये चल फिर रहे हैं? यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अगर आज हमें पता चले कि खुदा न खास्ता अगले साल तक हमारी आईसाइट ख़त्म हो जाएगी और हम ब्लाइंड हो जाएंगे, एक साल कैसा गुजरेगा? मेरा ले सोना ही छोड़ दे, आंखें खोल खोल के चीज़ों को देखते रहें कि अब इनको देखना नहीं है इसके बाद। ये आयतें क्या बता रही हैं? फनसीतहा, मेरी आयतें आई, मेरी नसीहत की बातें आई, मेरी दलीलें तेरे पास आई, एविडेंसेस आ गए और तू मुंह फिरता रहा। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि नेमत के बाद जवाल ना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाति निक्मतिका व जमीय सखतिक। अमल के नुक्ते, सजदे से इनकार नहीं करना, रब की नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह तआला की आयात पर अमल करना है, हद से नहीं गुजरना, कायनात में मौजूद निशानियों में गौर व फिक्र करना है, और अल्लाह तआला की हिदायत की पैरवी करनी है। अल्लाह तआला हमें इसी की तौफीक अता फरमाए। आगे हैं जी चंद आयतें, 17 रुकू है, 129 से 135। रब की हमदो सना के साथ तस्बीह की, सूरत भी पूरी हो रही, पारा भी पूरा हो रहा, और अल्लाह के नबी को बड़ा प्यारा वजीफा दिया जा रहा है कि जब लोग आपकी बात ना माने, दुख हो, तकलीफ हो, सताएं, तो आप अल्लाह की हमदो सना कीजिए। वलौल कलिमतुन सबकत, अगर तेरे रब की बात पहले ही से मुकर्रर शुदा और वक्त मुअय्यन करदा पर ना होती, यानी पहले ही से मुकर्रर शुदा और वक्त मुअय्यन करदा ना होता, तो इस वक्त अजाब आ चिमटता। बस इनकी बातों पर सब्र कर और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ बयान करता रह। सूरज निकलने से पहले और इसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रह। बहुत मुमकिन है कि तू राजी हो जाए, और अपनी निगाहें हर किस इन चीज़ों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को आरइश दुनिया की दे रखी हैं, ताकि इन्हें इसमें आसमा लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है। ख़ास तौर पर इस आयत में आप ख़वातीन, मुझे और आपको क्या कहा गया? दूसरों की चीज़ों को देख कर हसद और जलन का शिकार ना हो। आजमाइश है, पता क्या चला, हर नेमत इम्तिहान का पर्चा है। दूसरों की चीज़ों को देख के खुश हुआ करें, दुआ दिया करें, अल्लाह इनकी इस नेमत में इनको बरकतें दे, नेकियां करा ले, ये कहा करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो किन मुश्किलों से गुजर कर उन नेमतों को मेंटेन करते हैं। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और ख़ुद भी इस पर जमा रह। हम तुझसे रोज़ी नहीं मांगते, बल्कि हम तुझे रोज़ी देते हैं खुद ही, आखिर में बोल बाला तो परहेजगारी ही का होगा। उन्होंने कहा कि ये नबी, हमारे पास अपने परवरदिगार से कोई निशानी क्यों नहीं लाया? जवाब क्या आया? क्या इनके पास अगली किताबों की वाज़ह दलील नहीं पहुंची? और हम इससे पहले ही इन्हें अजाब से हलाक कर देते तो यकीनन ये कह उठते कि हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते इससे पहले कि हम जलील और रुसवा होते। कह दीजिए कि हर एक इंजाम का मंतजर है, बस तुम भी इंतज़ार में रहो। अभी अभी कतन जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन हैं और कौन हिदायत याफ्ता हैं। कितनी खूबसूरत बात है, क्या पता चला? सुबह शाम और रात की घड़ियों में अल्लाह की तस्बीह करनी है, दुनिया के साजो सामान की तरफ रागिब नहीं होना, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क को अपने लिए बेहतर समझिए, यानी जो आपके नसीब में उस पर राजी रहे। अपने घर पे राजी रहे, दूसरों के घर से मुकाबला ना कीजिए, अपने कपड़ों पे राजी रहें, अपनी औलाद पे राजी रहें। आपको तो कि लोग अपनी बेसकूनी कर लेते हैं खुद से, मिलेगा क्या? सिर्फ हसरतें, होके आए हाय उसके पास ये मेरे पास नहीं। मिल गया आपको? नहीं। हाँ, आपका दिल जलने लगा। पहले आप खुश थे, मुतमइन थे, तो जो आपको मिला वो आपका ही था। आपको यही सजना था, आपको यही जचना था, यही बच्चे आपको मिलने थे, इसी शौहर से आपकी शादी होनी थी, यही सास मिलनी थी आपको। खुश रहने का राज है। फिर इसी तरह से दुनिया के साजो सामान की तरफ रग़बत नहीं करनी और आखिरत की फिक्रें करनी है। अल्लाह के दिए हुए रिस्क को बेहतर समझना है, मेहनत के ज़रिए पाक रिस्क कमाना है मर्दों ने, और नमाज की पाबंदी करनी है, रसूलों की पैरवी करनी है। तो खूबसूरत सी सूरत पारे के साथ पूरी हुई। सूरत तौहा का पैगाम क्या है? इस्लाम गालिब होकर रहेगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने कलमा हक बुलंद किया, अल्लाह के नबी के सहाबा ने नबी की ज़िंदगी में भी और आपके जाने के बाद भी इस्लाम के गलबे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तन मन धन एक एक चीज़ लगा दी। लिहाजा हमें भी ये करना पड़ेगा। इस्लाम ही सच्चा और सीधा रास्ता है, इसको अपनाना है और नमाजों की पाबंदी करनी भी है और करवानी भी है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।